बेड के सिरहाने से लगकर बैठी कशिश ईशान के ख्यालों में खोई थी, अजीब कश्मकश में उलझी हुई थी। मुझे ईशान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? हमारा साथ तो बस चंद दिनों का साथ, पर अगर ये मोहब्बत ना हो तो फिर और क्या है? और अगर मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? मिश्रा जी तो प्यार, मोहब्बत और शादी जैसे बंधनों पर विश्वास ही नहीं करते। दीदी की शादी के बाद तो वे इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे और मुझे उनसे दूर जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई और दिल बुरी तरह से घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुझे याद नहीं घाट पर मिश्रा जी ने क्या कहा था? कितनी परवाह करते हैं वे तेरी। ज़रूर उनके दिल में भी तेरे लिए फीलिंग्स होंगी, तभी तो तेरी नाराज़गी से उन्हें इतना फ़र्क पड़ता है। रिश्ता टूटने वाली बात तो हमने शुरुआत में कही थी, अब तो सब बदल गया है। वे नहीं करेंगे मुझे खुद से दूर। पर पापा को प्यार में मिले धोखे के बाद क्या वे कभी खुद इस पर विश्वास कर सकेंगे? अगर उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालकर बाहर कर दिया तो मैं क्या करूँगी और कैसे रहूँगी उनके बिना? इसमें तो अब कोई शक नहीं था कि उसे मोहब्बत हो गई थी ईशान से, पर इस एकतरफा मोहब्बत का अंजाम सोचकर मन व्याकुल हो उठा। यूं ही बुध बनी बैठी दिल और दिमाग के बीच छिड़ी जंग में जाने कितना वक्त बीत गया था, पर कशिश को एहसास ही नहीं हुआ। काशी? अचानक ही कशिश के कानों में ईशान की आवाज़ पड़ी और उसकी तंद्रा टूटी। उसने चौंकते हुए सामने देखा तो ईशान आश्चर्य से आंखें बड़ी बड़ी किए उसे ही देख रहा था। आप कब आए? कशिश इतनी हैरान थी कि उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। बस अभी। पर तुम कहाँ खोई हो? अब तक सोई क्यों नहीं? ऐसे यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? ईशान ने भी हैरानगी से सवाल किया। कशिश का मन अब भी बेचैन था, पर उसने खुद को संभाला और चेहरे पर सामान्य भाव लाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, नींद नहीं आ रही थी। ईशान उसका जवाब सुनकर कुछ पल खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे उसके सच की तफ्तीश कर रहा हो। फिर गंभीरता से बोला, क्या हुआ काशी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है, मैंने बताया तो, नींद नहीं आ रही थी मुझे, अजीब अजीब सा लग रहा था, और कोई बात नहीं। अगर कोई और बात नहीं तो सोने की कोशिश करो, बहुत रात हो गई है। उसने प्यार से उसके गाल को छुआ और सोने को कहा। कशिश ने बस सर हिला दिया और बेड पर लेट गई। ईशान ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। सफाई करते हुए उसके कपड़े गंदे हो गए थे। कुछ देर बाद नहाकर कपड़े बदलकर लौटा तो कशिश बिस्तर पर लेटे करवट बदल रही थी। फिर अचानक वो उठकर बैठ गई। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा ईशान उसे ही देख रहा था। कशिश को इतना बेचैन उसने पहली बार देखा था और उसके माथे पर बल पड़ गए थे। काशी, क्या हुआ है? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, बस बेचैनी हो रही है, कशिश ने नज़रें झुकाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, फिर निगाहें उठाकर उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी। मिश्रा जी, आज आप मेरे साथ सो जाएंगे प्लीज़? तुम्हारे साथ? ईशान ने चौंकते हुए तेज़ आवाज़ में उसकी बात दोहराई और आँखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। पहली दफ़ा उसे कशिश के चेहरे के भाव उसके शब्दों से मेल खाते नहीं नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके गुलाबी लब कुछ कहने को बेताब है, उसकी वे बड़ी बड़ी कजरारी आँखें कुछ बयां करने को बेकरार हैं। पर क्या ये ईशान चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था? ईशान के साथ सोचकर ही उसकी धड़कनें बढ़ गईं। कुछ पल शौक में खड़ा उसे देखता रहा, फिर कशिश की उम्मीद भरी नज़रों को खुद पर टिके देखकर उसने सहमति में सर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों पलंग के दो कोनों पर चिपके लेटे थे। उनकी पीठ एक दूसरे की तरफ थी और दोनों की धड़कनें बेचैनी से जोरों से धड़क रही थी। कशिश कुछ देर तक यूं ही आंखें मूंद लेटी रही, फिर उसने सर घुमाकर ईशान को देखा। मिश्रा जी, मैं आपके पास आ जाऊं? ज्यादा पास नहीं जाऊंगी, बस आपका हाथ पकड़कर सो जाऊंगी। कशिश ने लगे हाथ सफाई भी पेश कर दी कि कहीं ईशान कुछ गलत ना सोच ले। ईशान, जो खुद आंखें मूंद लेटा हुआ था, उसने सीधे लेटते हुए अपनी एक बांह उसकी तरफ बढ़ा दी। कशिश झट से उसकी तरफ खिसक गई और उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। ईशान उसके ऐसा करने से कुछ असहज हो गया। आज दिल कुछ अलग अंदाज में धड़क रहा था और अजीब सी फीलिंग होने लगी थी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। एक तरफ कशिश उसकी हथेली को सीने से लगाए अपनी बेचैनी से निजात पा गई थी, ईशान से दूर जाने के ख्याल से ही तो उसे बेचैनी होने लगी थी, जिसने उसकी नींद, चैन, सुकून, आराम सब हराम कर दिया था। ईशान की नज़दीकियों से पुरसकून होकर गहरी नींद में सो चुकी थी कशिश, जबकि ईशान की बेचैनी शायद कशिश के दिल में समा गई थी और जाने कितनी ही देर तक वो टकटकी लगाए कशिश को देखता रह गया था। अगली सुबह कशिश की नींद जब खुली तो उसने खुद को ईशान की बाहों में पाया। रात को उसने उसकी बाँह पकड़कर सोया था, पर अब उसके सीने से लगी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। खुद को ईशान की बाहों में देखकर कशिश के लबों पर मीठी सी मुस्कान बिखर गई। उसने सर उठाकर उसे देखा और कुछ पल यूं ही तकती रही। फिर उसने अपनी कमर पर लिपटी ईशान की बाहों को हटाया और हल्का ऊपर होकर कोहनी बेड पर टिकाए हथेली गाल पर रखकर तिरछा लेटकर उसे देखने लगी। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं, शायद तभी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, पर आपको तो मुझसे मोहब्बत नहीं, आपने तो मुझसे बस रजनी दीदी के लिए शादी की थी। 3 महीने बाद उनकी शादी हो जाएगी तो क्या आप उसके बाद मुझे अपने घर और जिंदगी से बाहर निकाल देंगे? क्या जैसे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती? आपने तो कहा था कि अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो आपको समझे, आपके परिवार को संभाले, आपके लिए लॉयल रहे, तो आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। वो सब तो मैं करती हूँ आपके लिए, तो क्या आप मुझे अपनी ज़िंदगी में रहने देंगे? और अगर आपने दीदी की शादी के बाद मुझे इस घर से जाने को कह दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी और कैसे रहूँगी आपके बिना? क्या अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो आप मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह दे देंगे? नहीं, पर मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। हमने तो प्यार के लिए कोई कंडीशन रखी ही नहीं थी, और अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आप मुझे छोड़कर उस लड़की का साथ क्यों देते? आप बस इस दिखावे के रिश्ते को निभा रहे हैं सिर्फ अपनी दीदी के लिए, तभी तो मुझसे इतना कतराते हैं। मुझे मनाने भी इसीलिए आए थे ताकि दीदी को हमारे रिश्ते पर शक ना हो। 2 बोल भी तो आप प्यार से नहीं बोलते मुझसे, इतना परेशान करती हूँ मैं आपको, और इसीलिए आप जल्दी से जल्दी दीदी की शादी करवाना चाहते थे ताकि मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालकर कशिश नाम की इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। तो ठीक है, यही डील हुई थी हमारी, तो यही सही। दीदी की शादी तक मैं बेहतरीन एक्टिंग करूंगी, बिल्कुल वैसे रहूंगी जैसे अब तक रहती आई हूं, आपका ख्याल भी रखूंगी और आपके साथ मिले लम्हों को खुलकर जीऊंगी। और अगर शादी के बाद आपने खुद से मुझे रुकने को नहीं कहा तो जैसे कि तय था, मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। खैरात में मिले साथ से बेहतर होगा कि मैं तन्हा ही रह जाऊँ। दिल पर पत्थर रखकर कशिश ने ये फैसला कर लिया था और फिर उठकर बाथरूम में चली गई। ईशान को कशिश सीधे नाश्ते के वक्त ही नजर आई और हमेशा की तरह आज भी उसके सर पर सवार रही। उसका लंच लाकर उसे दिया और उसके जाने के बाद कामों में लग गई। फिर अपने और ईशान के कमरे की सफाई भी की, जिसमें बाकी का वक्त गुजर गया था।
2 दिन देखते बेखते ही बीत गए थे। दिनेश के साथ से कशिश का दिल लगा रहता था, हंसी मजाक होता, इतने लोग थे तो घर में खूब रौनक रहती। काम भी ज्यादा था पर काम करने वाले भी बढ़ गए थे। इन 2 दिनों में ईशान बहुत मसरूफ रहा, कशिश और उसे ज्यादा वक्त साथ मिला ही नहीं। आज भी वो सुबह जल्दी दुकान चला गया था, जबकि कशिश दिवाली के दिन घर में फैले कामों को समेट रही थी। ताज़े फूलों से गेट और घर सजाया था, मंदिर भी साफ करके पूजा के लिए सजा दिया था। जया दीदी के साथ मिलकर दहलीज पर खूबसूरत सी रंगोली भी बना ली थी। भाभी पूजा का सामान लेने गई थीं। दोपहर तक लगभग सब काम हो गए थे, बाकी सब लंच के बाद कुछ देर आराम करने चले गए। कशिश भी काम से फ्री हुई और रसोई से बाहर निकली तो आंगन की चौकी पर दिनेश बैठा फ़ोन चला रहा था। कशिश ने कुछ सोचा और उसके पास चली आई। दिनेश जी? जी। दिनेश ने तुरंत ही फ़ोन पर से नज़रें हटाते हुए कशिश को देखा। मुझे दुकान ले चलेंगे? ईशान की दुकान जाना है आपको? जी। क्यों, कुछ काम है तो कहिए, मैं कर देता हूँ। काम कुछ नहीं, आज दुकान पर बहुत भीड़ होगी ना, तो बस इसलिए जाना है। यहाँ तो अब मैं खाली ही हूँ, क्या पता वहाँ उनकी कोई मदद कर सकूँ। ठीक है, ले चलता हूँ आपको, पर वहाँ काम करने के लिए 2 लड़के हैं। मुझे नहीं लगता आपको वहाँ जाकर परेशान होने की ज़रूरत है। ईशान को भी शायद आपका आना अच्छा ना लगे, पर मुझे जाना है और पूजा के लिए मिठाई भी तो लानी है, आप ले चलिए ना मुझे। कशिश के दबाव बनाने पर दिनेश राज़ी हो गया, वो यहाँ रहता था नहीं तो रिक्शा करके दोनों दुकान के लिए निकल गए। दूसरी तरफ आज काशी मिष्ठान भंडार में खूब भीड़ उमड़ी थी। घर वालों के लिए, पूजा के लिए, तो देने लेने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ पैक करवाई जा रही थी, और वे 3 लोग भी इस काम में कम पड़ रहे थे, पर आदत थी तो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए तीनों ने दुकान संभाल लिया था। सुबह से खूब बिक्री हुई थी, इतनी कि उन्हें चैन से 1 मिनट बैठने का भी वक्त नहीं मिला था। दोपहर चढ़ी तब जाकर भीड़ में कुछ कमी आई। ईशान अभी भी किसी कस्टमर के लिए मिठाई पैक कर रहा था जब एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। मिश्रा जी? आवाज़ सुनकर ईशान ने सामने देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके कारण 2 दिन पहले उसकी और कशिश की लड़ाई हो गई थी। दिवाली थी तो नया जोड़ा पहने, बालों को लंबी चोटी में बांधे, अपने लटों के साथ खेलते हुए वो बड़ी ही अदा से ईशान को देख रही थी। आज पहली बार ईशान को उसके देखने का तरीका अजीब लगा। जी कहिए। ईशान बड़े ही अदब से उसे मुखातिब हुआ। 2 किलो गुलाब जामुन और 1 किलो काजू कटली पैक कर दीजिए। लड़की ने मीठी सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए जवाब दिया। आम कस्टमर जैसे ही ईशान ने उसे भी ट्रीट किया और सर हिलाते हुए उसकी मिठाई पैक करने लगा, पर आज उसे उसकी निगाहों को खुद पर ठहरने का एहसास हो रहा था और मन ही मन बुरी तरह खींच उठा था वो। उसकी बर्दाश्त की हद तो तब पार हुई जब उसके शब्द ईशान के कानों से टकराए। मिश्रा जी, आप तो इतने सीधे और स्वीट से हैं, फिर आपने उस चालाक बदतमीज़ लड़की से शादी कैसे कर ली? वो तो आपकी भी इज्जत नहीं करती, आपको तो कोई आपके जैसी ही लड़की मिलनी चाहिए थी। ईशान का सबरब जवाब दे गया। उसके गुस्से से लाल निगाहें उसकी ओर उठी और साथ ही दबी पर कठोर आवाज़ बाहर आई।